मुख्य समाचारों में क्वींसलैंड में बूस्टर अंतराल बदलकर अब 3 महीने का। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम कर रहे हैं सुरक्षा संबंधों को मजबूत। और खेलों में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। विक्टोरियन स्वास्थ्य अधिकारी लोगों को उनके कोविड-19 बूस्टर शॉट्स प्राप्त करने के लिए नए प्रोत्साहन दे रहे हैं। राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र के वर्कर्स को टीकाकरण के लिए वेतन समेत छुट्टी देने की बात की है। ट्रेजरर टिम पलास का कहना है कि इस बदलाव से तीसरी खुराक लेना आसान हो जानी चाहिए।
We're doing this because the health and safety of our public service, our public sector employees, and indeed the whole community is vitally important to us. We recognise that as an employer, we do have a duty of care to our public servants, but they also have a responsibility to the community at large to make sure that they're not a source of infection in those interactions that they must necessarily go about in their day-to-day functions. And that's why, as an employer, we're taking this vital step.
विक्टोरिया ने कोविड से संबंधित 20 मौतें और 18,167 कोरोना वायरस संक्रमण दर्ज किए हैं। वर्तमान में अस्पताल में 1,096 लोग हैं, जिनमें से 121 गहन देखभाल में हैं। क्वींसलैंड के लोग शीघ्र ही अपने टीकाकरण की दोनों खुराकों के पूरे होने के 3 महीने बाद अपना कोविड-19 बूस्टर शॉट प्राप्त कर सकेंगे। ये बदलाव सोमवार 24 जनवरी से प्रभावी होगा। नवीनतम रिपोर्टिंग अवधि में राज्य ने 13 मौतें और कोविड-19 के 16,031 नए मामले दर्ज किए हैं। मृत लोगों में से केवल एक को अपना बूस्टर टीका मिला था। प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेशिया का कहना है कि तीसरी खुराक सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देती है।
So from Monday, we are cutting that eligibility to 3 months, down from 4 months. So our pharmacists will be prepared, our GPs will be prepared, our health centres will be prepared. So that brings us in line with what other jurisdictions are doing as well. The Chief Health Officer advised me this morning that it is safe to do that.
क्वींसलैंड के अस्पताल में वायरस से ग्रसित 855 लोग हैं और इनमें से 54 गहन देखभाल में हैं। न्यू साउथ वेल्स के हंटर न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में कोविड-19 से संक्रमित एक शिशु की मौत हो गई है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैरी चेंट का कहना है कि ये स्थापित करने के लिए एक कोरोनियल जाँच चल रही है कि क्या बच्चे की मौत कोविड से ही हुई है। डॉक्टर केरी चेंट ने परिवार की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार की गोपनीयता के लिए कहा।
You can imagine that this is one of the most difficult times a family could ever go through, and I just ask the media to really respect the privacy of this family. The coroner and the forensic pathologists that support the coroner are working very hard to get the answers that most importantly the family want. The family and the clinicians want in terms of this child and the contribution that COVID may or may not have made to its death.
New South Wales ने कोविड महामारी का अपना सबसे घातक दिन दर्ज किया है। राज्य में मृतकों की संख्या 46 है। इस तरह से राज्य में अब तक 1,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। वैसे अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 2,781 से घटकर 2,743 हो गई है और आईसीयू में भी कल यानी 20 जनवरी को मरीजों की संख्या में कुछ गिरावट हुई। ये 212 से गिरकर 209 हो गई है। तस्मानिया ने 2020 के बाद से कोविड से अपनी पहली मौत दर्ज की है। होबार्ट में वृद्ध देखभाल में रहने वाली ये एक 90 वर्षीय गैर टीकाकृत महिला है। अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि जिस महिला का टीकाकरण नहीं हुआ था उसने जैब नहीं लेने का विकल्प चुना था या यदि उसे ऐसे करने का अवसर ही नहीं दिया गया। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य उपनिदेशक डॉक्टर जूली ग्राम का कहना है कि तस्मानिया में सभी वृद्ध देखभाल सुविधाओं को टीकाकरण कार्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त है.
All our aged care facilities have had the opportunity to be vaccinated. I can't comment on an individual person, but all our aged care facilities have had the option of vaccination provision within them.
राज्य ने 866 नए मामले दर्ज किए हैं. तस्मानिया के प्रीमियर पीटर गुडविन ने कहा कि कल की तुलना में अधिक लोगों को आइसोलेशन से मुक्त किया गया है. ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, एक नई साइबर और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं. विदेश मामलों की मंत्री मैरिस पेन, रक्षा मंत्री पीटर डाटन और यूनाइटेड किंगडम की विदेश सचिव लिज ट्रस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ओकमिन बैठक में किए गए निर्णयों की रूपरेखा तैयार की गई. महामारी शुरू होने के बाद से ओकमिन वार्ता देश में आयोजित अपनी तरह की पहली बैठक है. सुश्री पेन का कहना है कि ये साझेदारी ऐसे समय पर हुई है जब इंडो पैसिफिक में बढ़ती मुखरता और यूक्रेन की सीमा पर रूसी आक्रमण जैसी रणनीतिक चुनौतियां हमारे सामने मुखर तौर पर हैं.
Yesterday we signed an infrastructure investment MOU and a cyber and technology partnership. Perfect examples of how we are cementing that practical cooperation. We have today also discussed at length dangerous disinformation and how we can work more closely together in countering the narratives of authoritarian actors who seek to undermine our efforts to promote openness and stability.
Australia ka super cooled liquid hydrogen ka pehla vyavsayik shipment jald hi Japan ke liye ravana hoga. Swizo Frontier namak ek visheshagya pot वर्तमान में विक्टोरिया के हेस्टिंग बंदरगाह पर है, जो कोबी की यात्रा के लिए लोड होने के लिए तैयार है. सीएसआईआरओ के वैज्ञानिक 500 मिलियन डॉलर लागत की हाइड्रोजन ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला परियोजना के पहले चरण के लिए इस उद्योग के साथ काम कर रहे हैं. ये शिपमेंट ऑस्ट्रेलिया का सबसे उन्नत हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत को चिन्हित करेगा. ये दुनिया में पहली बार होगा कि तरल हाइड्रोजन बनाकर उसे द्रवीभूत करना और फिर समुद्र के रास्ते से उसे एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाना. हिंकलर के फेडरल सांसद और क्वींसलैंड के संसाधन और जल मंत्री कीथ पिट का कहना है कि उन्हें उन साझेदारियों पर गर्व है जो वो बना सके हैं.
So what we see here today is new leaps forward in terms of technology, new leaps forward in terms of opportunities for Australia in partnership with countries like Japan, an incredibly important trading partner, but in a partner in a wide variety of fields. So I'm very pleased to be here to see the results of this very hard work, and I look forward to those opportunities for Australia's resources sector.
भारत में कोरोना की तीसरी लहर के बीच कोविड-19 के नए मामलों में रोजाना तेजी देखी जा रही है. आज शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 के 347,254 नए केस दर्ज किए गए. एक दिन में 703 मरीजों की संक्रमण की वजह से मृत्यु हुई है. राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 43 लोगों की मृत्यु हुई, जो तीसरी लहर में दिल्ली में एक दिन में सबसे अधिक मौतें हैं. इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े हैं. अब तक भारत में इस वेरियंट के कुल 9,692 मामले सामने आ चुके हैं. कोरोना की दैनिक संक्रमण दर 17.94% हो गई है. और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की. ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 53.55 रुपए के बराबर है. खेल समाचारों में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. T20 का अगला मुकाबला 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा. T20 के सभी मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों में यानी ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, सिडनी, मेलबर्न, होबार्ट और जिलोंग में आयोजित होंगे। आईसीसी के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक फर्स्ट राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद 22 अक्टूबर से सुपर 12 के मुकाबले शुरू होंगे। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में बहुत गर्मी रहेगी, धूप छाई रहेगी, अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, उमस रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री। मेलबर्न में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। होबार्ट में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। सिडनी में भी आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। और डार्विन में बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।